दिन भर 19 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। कश्मीरी युवक जाहिद रसूल की मौत पर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। कश्मीरी विधायक इंजीनियर रशीद पर दिल्ली में स्याही फेंकी गई।
अच्छी बात नहीं है, हम बीजेपी के, हम नरेंद्र मोदी जी से ही अपील करना चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप सबों के प्रधानमंत्री हो। खुदा के लिए आप इस देश को बचाइए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे तो फिर गाय से ज्यादा इंसान की कदर करनी है।
बात करेंगे जनता दल यू के प्रमुख शरद यादव से।
तो प्याज के दाम भी आसमान छू दिए, दाल तो ऐसा कभी इसका दाम हुआ ही नहीं इतना पैसा, तो दाल रोटी भी और चटनी रोटी भी गरीब के लिए।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के एक निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद पर दिल्ली के प्रेस क्लब में काली स्याही फेंकी गई है। इससे पहले बीफ विवाद को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनके साथ हाथापाई भी हो चुकी है। वहीं एक ट्रक ड्राइवर की झुलसकर मौत के बाद बुलाए गए बंद के कारण श्रीनगर और कुछ अन्य शहरों में कई जगह झड़पों के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। अलगाववादी नेताओं को उनके घर पर नजरबंद किया गया है और राज्य में परीक्षाओं और इंटरव्यू को टाल दिया गया है। उधमपुर में 24 वर्षीय ट्रक ड्राइवर जाहिद के ट्रक पर पेट्रोल बम फेंका गया था, जिसके बाद वह बुरी तरह झुलस गया था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कल उसकी मौत हो गई थी। दिल्ली तीसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था का विकास 6.9% के दर से हुआ। कई बार ब्याज दरों में कटौती और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के कई कदमों के बावजूद विकास की दर पिछले 6 सालों में सबसे कम आंकी गई है। चीन के औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सर्विस सेक्टर में स्थिरता देखी गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के प्रवक्ता शेंग लियोन ने कहा, अर्थव्यवस्था के स्थिर रहने की संभावना लग रही है। इसका मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था के विकास की गति स्थिर बनी रहेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चीन के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए चलाई जा रही नई मुहिम और चीन के आर्थिक विकास पर उसके दबाव के बीच नया संतुलन बनता दिख रहा है। ये थे शेंग लियोन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोप्पू के कारण आई बाढ़ और भारी बारिश में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। फिलीपींस रेडक्रॉस के अध्यक्ष रिचर्ड गॉर्डन ने बीबीसी को बताया कि लोगों को बचाने के लिए राहत नावें भेजी जा रही हैं। रिचर्ड गॉर्डन के मुताबिक कई इलाकों में बाढ़ का पानी 4 मीटर तक पहुंच गया। फिलीपींस में तूफान के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तूफान के कमजोर पड़ने की खबर है, लेकिन अब भी इसके 2 दिन तक सक्रिय रहने का अनुमान है। पंजाब में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटना को लेकर आज कई शहरों में लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस के पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बावजूद प्रदर्शनों के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। इस बीच अमृतसर के पुलिस कमिश्नर जितेंद्र सिंह औलख ने बताया कि अमृतसर में 52 लोगों को एहतियातन गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। सीरिया में उत्तरी और मध्य इलाकों में कई जगहों पर सरकारी सेना और सहयोगी गुटों ने विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। रूस सीरिया की सरकारी सेना का समर्थन हवाई हमलों के जरिए कर रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। गोमांस पर प्रतिबंध के विवादास्पद कानून को लेकर भारत प्रशासित कश्मीर में फिर अस्थिरता और तनाव का माहौल है। कल जब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में झुलसे हुए एक युवक जाहिद रसूल भट्ट की मौत हो गई तो घाटी में विरोध प्रदर्शन हुए और अलगाववादी व्यापारी संगठन की कॉल पर बंद रखा गया। जाहिद उस ट्रक पर थे जिस पर कथित रूप से बीजेपी के समर्थकों ने उधमपुर जिले में पेट्रोल बम से हमला किया था। हालांकि गोमांस पर प्रतिबंध के लिए अदालतों में दर्ज सभी याचिकाओं को खारिज किया गया है, लेकिन जाहिद की मौत से एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
जम्मू के उधमपुर जिले में कश्मीरी ट्रक पर हमला होते ही घाटी में अस्थिरता का जो वातावरण पैदा हो गया था वो पिछले दिनों अदालत के उस आदेश से खत्म हो गया था जिसमें गौ मांस पर प्रतिबंध के लिए दी गई याचिकाओं को खारिज किया गया। मगर 9 अक्टूबर को हिंदू बहुसंख्यक उधमपुर में एक ट्रक में सवार 3 मुसलमान कश्मीरियों पर हमला हुआ जिसमें झुलसे हुए 3 युवकों में से एक जाहिद रसूल की कल दिल्ली में ही मौत हो गई। जाहिद की मौत से एक बार फिर तनाव फैल गया और अलगाववादियों ने बंद का आह्वान किया जिसके दौरान प्रशासन ने सारे इम्तिहान स्थगित किए और जगह जगह नाकाबंदी की। जाहिद की लाश जब दक्षिणी कश्मीर में इनके घर पहुंचाई गई तो हजारों लोग इनके जनाजे में शामिल हुए जिसके दौरान उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए। अपोजिशन के नेता उमर अब्दुल्ला ने जाहिद की मौत के लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी को दोषी ठहराया है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मारे गए युवक के परिवार वालों के लिए एक सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए की नकद सहायता की घोषणा करते हुए इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उत्तरी कश्मीर के लंगेट क्षेत्र के एमएलए इंजीनियर रशीद गोमांस से जुड़े विवाद में काफी सक्रिय रहे हैं। वो विधानसभा में भी बीजेपी विधायकों से गुत्थम गुत्था हुए और उधमपुर हमले में घायल हुए युवकों को देखने के लिए दिल्ली भी गए। इंजीनियर रशीद के मुताबिक जब वो दिल्ली में जाहिद की मौत के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली प्रेस क्लब जा रहे थे तो इन पर आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों ने स्याही फेंक दी। उन्होंने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया यूं जताई।
अच्छी बात नहीं है, हम नरेंद्र मोदी जी से ही अपील करना चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप सबों के प्रधानमंत्री हो। खुदा के लिए आप इस देश को बचाइए। अगर आप चाहते हैं कि यहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे तो फिर गाय से ज्यादा इंसान की कदर करनी है और साक्षी महाराज जैसे लोगों को लगाम देनी है।
अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उधमपुर जैसी घटनाओं पर सख्त प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर कहते हैं,
सारे मुल्क की सियासत चलाने के लिए वो कश्मीर को लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं, यहां ऐसे हथकंडे कर रहे हैं ताकि उनको मुल्क में फायदा मिले। यहाँ मुसलमानों को अलग थलग कर रहे हैं, उनके साथ जातियां कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं लोगों को। आप कश्मीर एक सेंसिटिव इश्यू है, बड़ा ही सीरियस मामला है। आपको पता है अभी हालात ठीक होते हैं, अभी घंटे में हालात खराब हो जाते हैं। ऐसे सूरत हाल में क्या प्रवोक कर रहे हैं आप यहाँ के लोगों को? क्यों आप उनको प्रवोक कर रहे हैं और वो किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जिससे यहाँ हालात खराब हो जाएं?
गौरतलब है 8 सितंबर को जब अदालत ने गौमांस पर प्रतिबंध के 83 वर्षीय कानून से पर्दा हटा लिया तो घाटी में राजनीति का तिकोनी युद्ध छिड़ गया। अपोजिशन पार्टियों ने विधानसभा में इस कानून को खत्म करने के लिए बिल लाने की बात की। एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने अदालत में विरोधी रिट दायर की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अदालत के फुल बेंच ने ऐसी तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय सीरीज को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद BCCI अध्यक्ष शशांक मनोहर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शहरयार खान के बीच बातचीत मंगलवार तक के लिए टाल दी गई है। बोर्ड के आलाधिकारी राजीव शुक्ला का कहना है कि बातचीत रद्द नहीं हुई है। मंगलवार को वो बातचीत के एक और दौर के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुंबई से आयुष देशपांडे की रिपोर्ट।
पहले गुलाम अली का कॉन्सर्ट, फिर खुर्शीद महमूद अली की किताब का विमोचन और अब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच हो रही बैठक का विरोध। शिवसेना भारत का पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध रखने की कोशिश का कड़ा विरोध कर रही है। सोमवार सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI अधिकारियों के बीच होने वाली मुलाकात से पहले ही शिवसेना ने मुंबई में BCCI के ऑफिस में घुसकर प्रदर्शन किया। सोमवार सुबह करीब 100 से अधिक शिवसैनिकों ने BCCI अध्यक्ष शशांक मनोहर के दफ्तर में घुसकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। हंगामे के बाद दोनों बोर्ड के अधिकारियों के बीच होने जा रही आज की बैठक को रद्द कर दिया गया है। इस विरोध के बाद राजनीतिक गलियारों में शिवसेना की कड़ी निंदा हो रही है। इस तरह के आक्रामक प्रदर्शन को गलत ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी कहती हैं,
देखिए लेजिटिमेट प्रोटेस्ट होता है जो पीसफुल है। जो आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हो तो फिर वो गलत है। और हमारी सरकार ने हमेशा सिक्योरिटी दी है जहाँ लेजिटिमेट परमिशंस है, लेजिटिमेट वीजाज है। लेकिन आई थिंक दैट देयर इज अ लार्जर क्वेश्चन व्हिच इंडियंस वांट टू आस्क वीज़ा-वीज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ एजिटेशन। बट दिस एजिटेशन इफ पीसफुल वी वेलकम, इफ अनडेमोक्रेटिक वी कंडेम।
वही शिवसेना इस विरोध को जायज ठहराती है और भारत का पाकिस्तान से किसी भी तरह का रिश्ता ना रखने की सरकार को सलाह देना चाहती है। शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे कहती हैं,
देखिए शिवसेना ये पहले से ही ये मानना है और हम इससे बिल्कुल ही अपने स्टैंड पे फर्म हैं। पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के संबंध रखने नहीं चाहिए भारत ने। एक तरफ उनके खिलाड़ी आएंगे, उनके गायक आएंगे, कल्चरल टाइज आप बनाएंगे, और कहेंगे कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम को राजनीति से अलग रखना चाहिए, मगर एक तरफ एक देश है जो हमारे जवानों को बेवजह मार रहा है। अगर कोई वॉर डिक्लेयर है तो बात सही है, मगर जब कोई युद्ध की घोषणा नहीं है और हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, ना ही बॉर्डर पर मगर देश में भी आतंकवाद से आज हजारों घर उजड़ चुके हैं, और ऐसी स्थिति में ऐसे एक नेबरिंग कंट्री से हम बाकी सब संबंध रखेंगे तो क्या ये सिर्फ जवानों की और कुछ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अपने प्राण त्याग देने चाहिए देश के लिए और बाकी सारा देश उनके गानों के ऊपर अपना सर हिलाते रहे, तो क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी बनती है? यहाँ एक तरफ जवान मरे और कुछ सिविलियंस भी मरे और बाकी सारा देश उनके गानों पे झूमे, तो ये तो हो नहीं सकता है। शिवसेना ने ये पहले से हमारा स्टैंड बिल्कुल फर्म है कि पाकिस्तान से कोई भी संबंध हो वो रखना नहीं चाहिए।
गौरतलब है कि पाकिस्तान और भारत के बीच इस वर्ष दिसंबर में क्रिकेट सीरीज प्रस्तावित थी, हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हो सका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों का आज बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर और सचिव अनुराग ठाकुर से मिलने का कार्यक्रम था जो अब दिल्ली में रखा जाएगा।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
बिहार विधानसभा चुनाव में अब सबकी नजर तीसरे चरण के चुनाव पर है जिसमें 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार के चुनाव प्रचार को कवर करने गए हमारे साथी सलमान रावी ने जनता दल यू के अध्यक्ष शरद यादव से बात की और पूछा कि इस बार का चुनाव मुकाबला तो काफी घमासान दिखाई दे रहा है।
नहीं, आसान हो गया, घमासान होता, लेकिन पूरी भारत सरकार जब आ गई तो जितना ये मंत्री प्रधानमंत्री जितना घूम रहे हैं उतना हम लोग तो अपनी रफ्तार से काम करते ही हैं। चुनाव में जो रोज़ जो रूटीन रहता पहले भी था आज भी है, इन्होंने कहा कि महंगाई घटा देंगे, तो हिंदुस्तान के इतिहास में तो दाल की ऐसी कीमत कभी हुई नहीं। और देश के अंदर एक बड़ी आम बात है कि लोग मिलते हैं तो बोलते हैं भाई क्या हालचाल है, तो बोले दाल रोटी चल रही है। तो प्याज के दाम भी आसमान छू दिए, दाल तो ऐसा कभी इसका दाम हुआ ही नहीं इतना पैसा, तो दाल रोटी भी और चटनी रोटी भी गरीब के लिए मैसर। वो जितना उन्होंने पिछले चुनाव में सब्ज बाग दिखाए थे, सपने दिखाए थे, उसका एक भी रोड मैप नहीं है।
बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि ये लहर है असल में भारतीय जनता पार्टी।
नहीं, वो जो दावा करें, जब कम्बाइंड बिहार था तो झारखंड में बिहार बीजेपी थी, यहाँ कोई बीजेपी थी नहीं। अतिरिक्त से जो 2014 का चुनाव था वो हमारी डिवीजन से पार हो गए। वो
जो चुनाव का प्रचार शुरू हुआ था डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ओछी बयानबाजी पे आ गया, तो गौमांस के मुद्दे पर आ गया। क्या लगता है आपको कि ये जो ट्रेंड आया ये ऑल टाइम लो रहा है बिहार में? शायद इससे पहले कभी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों, इस तरह का कभी ट्रेंड नहीं देखा गया।
दो मुद्दों पे यहाँ जब से हम आए हैं तब से उसी पे बोलते हैं। एक तो सोशल डिस्पेरिटी है, हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था के चलते जो सामाजिक विषमता है वो देश की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा मुद्दा है विकास का। उन्होंने पूछा कि आप बताओ 25 साल में आपने क्या किया।
लालू प्रसाद यादव जी का जो दौर था 15 साल का जिसको रेफर करते हैं,
उसका भी हर सवाल में जवाब दे रहा हूँ। 25 साल में 15 साल लालू के जो थे वो टरमाल के थे, मंडल लगा था उस समय, देश भर में उथल पुथल हुई। ये रथ ने इन्होंने राम रथ निकाल दिया, समाज में बहुत टर्माइल था। वो कोई मुद्दा नहीं है क्या? उसमें लालू यादव उस पीरियड में थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे, मायावती थे, काशीराम थे।
क्या रीजन है कि बिहार में कास्ट पर जो है बड़ा फोकस रहता है हर इलेक्शंस में, कि कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिल्कुल उसी तरह के कंपोजिशन में चुनाव भी लड़े जाते हैं, उसी तरह की इक्वेशंस देखी जाती हैं कि किसका कितना परसेंट वोट किधर है, कैसे उसको लड़ा जाए। मतलब ये किस तरह का फिनोमेना है?
ये देश पाखंडी है, इतना बड़ा झूठ है। बिहार में कास्ट है, जात पात है, यानी ये किसका फैलाया हुआ है? किस देश के किस हिस्से में, किस रिमोट एरिया में कास्ट नहीं है? कौन सा चुनाव है जो बगैर सामाजिक, जो हिंदुस्तान की कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, वो हजार साल की संस्था हो गई है। केरल में नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, लिंगायत बुकलिंगा जो है वो कर्नाटक में नहीं है, मराठा नान मराठा महाराष्ट्र में नहीं है, पटेल नान पटेल नहीं है। कौन सा सूबा है? बिहार में ये सचेत है हर तरह के आंदोलन में, यहाँ आदमी जो है पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है, इसलिए इसके ऊपर और कुछ तो चल नहीं सकता। जैसे बिहार के लोगों ने जात पात बनाई, जात पात तो पूरे देश में समूचे इंडियन कॉन्टिनेंट का एक फिनोमेना है। उसके बारे में ये पार्टी, हमारी पार्टी अकेली है कि जिसके पास सोशल डिस्पेरिटी और इकोनॉमिक डिस्पेरिटी दोनों का विचार है। हम मानते हैं कि सोशल सामाजिक विषमता के चलते आर्थिक विषमता है। ये जो आर्थिक विषमता है ये सामाजिक विषमता की बेटी है। तो जब तक समाज में इसके एरेडिकेशन का, इसके खात्मे का रास्ता नहीं बनेगा, तो हम तो इसको बीमारी मानते। डॉक्टर लोहिया जात तोड़ो चला रहा था, जयप्रकाश जी जात तोड़ो चला रहे थे, हमारी पार्टी अकेली ऐसी है। और जो आपने पूछी, अच्छी बात पूछी, ये अजीब पाखंडी देश है साहब। और जो इस देश का जो बुद्धिजीवी है, जो लोग जिनको जिनके हाथ में व्यवस्था है, वो कितने ज्यादा धूर्त हैं कि वो कह रहे हैं बिहार में जात पात है,
बिहार को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ।
बदनाम नहीं, एक मुहावरा उसके ऊपर चिपका दिया, और कोई बात है नहीं। जैसे यूपी में जात पात नहीं है, आपके राजस्थान में जात पात नहीं हो रहा, हरियाणा में नहीं हो रहा, किस जगह की बात कर रहे हैं आप?
सर ये बताइए कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, और उनको लग रहा है कि शायद वो जो लोकसभा का फॉर्मूला था वो यहाँ पे काम कर जाएगा।
वो चतुराई और चालाकी से 2014 का चुनाव होगा जीता, वो जीते वो ही चालाकी यहाँ है उनकी कि कई लोगों के नाम फ्लोट करेंगे, एक्स कास्ट का, वाई कास्ट का, जेड कास्ट का, यानी अलग अलग जातियों के लोगों कहेंगे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये है मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री। इतने दिन से आप यहाँ क्या मतलब है? ये उन्होंने नरेंद्र मोदी नहीं, सबको जो सब जातियां हैं उनके अंदर, कि वो जातियां उनके साथ तो है नहीं, ये जो वीकर सेक्शन ये कास्ट है उनके साथ नहीं है, वो जानते हैं कि हमारे विरोधी हैं, तो उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा शायद, इसलिए वोट दे दे कुछ
सब्ज बाग दिखाना उनको भी।
तो उनने कई तरह की जातियों को अपने साथ लाने का, जो कभी उनके साथ नहीं रहे, उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है।
जनता दल यू के अध्यक्ष शरद यादव से बात कर रहे थे सलमान रावी। बिहार विधानसभा चुनाव पर बीबीसी की विशेष सीरीज बूझिए ना बिहार को में आज जानने की कोशिश होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट कठुआ दल कौन होंगे। सीएसटीएस के संजय कुमार के साथ हैं मोहनलाल शर्मा।
बूझिए ना बिहार को, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल।
इस बार के विधानसभा चुनावों में वोट कटुआ पार्टी कौन कौन सी हो सकती है?
बिहार के विधानसभा के चुनाव को अगर हम देखें तो कई पार्टियां और कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ऐसा देखा गया है बिहार के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी लंबी कतार होती है। कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव इसीलिए लड़ते हैं कि वो दूसरों का वोट काट सकें। कई बार ऐसा भी देखा गया इन निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी चुनाव लड़ने के लिए स्पॉन्सर करती है। वोट कटवा का रोल बिहार के विधानसभा चुनाव और कई और राज्य के चुनाव में भी देखा गया है।
तो बिहार में वोट कटवा कौन है?
चुनाव के शुरुआत में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिहार का पूरा चुनाव दो खेमे में बटी हुई दिखाई पड़ेंगी। एक तरफ नीतीश लालू के नेतृत्व का खेमा और दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व का खेमा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया हमने देखा कई पार्टियों चुनाव अलग लड़ रही हैं। हालांकि एक तीसरा गठबंधन उभर के सामने आया, इसमें पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी, इन दो पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसमें एनसीपी भी शामिल है। ऐसा उम्मीद है ये पार्टी कई विधानसभा क्षेत्र में वोट कटवा का काम कर सकती है। साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो सीमांचल के इलाके में, और ये सीमांचल का इलाका वो इलाका है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी बड़ी संख्या में है, तकरीबन 26-27% मुस्लिम मतदाता हैं। एमआईएम लगभग 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट खड़े करने का निर्णय ले चुकी है। ये भी एक वोट कटवा के रूप में काम करेंगे और ये सब डैमेज लगभग ऐसा उम्मीद है ये जो भी वोट काटेंगे ये लालू नीतीश की पार्टी का वोट काटेंगे, क्योंकि मुस्लिम जनाधार भी उनके तरफ है और जो यादवों का वोट जो पप्पू यादव या मुलायम सिंह यादव को मिलने की उम्मीद है कुछ कुछ विधानसभा क्षेत्र में, इससे भी नीतीश और लालू की पार्टी का नुकसान होगा। सीरियस तरीके से मुझे लगता है पप्पू यादव की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी और एमआईएम इन चुनाव में वोट कटवा के रूप में उभर के सामने आएंगे।
बूझिए ना बिहार को,
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का, जब आप अपनी राय लिखते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में। आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और मोहनलाल शर्मा।
आपकी राय में मैं हूं मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं स्वाति बख्शी। स्वाति बख्शी, क्या कह रही हैं आज की चिट्ठियां?
आज की चिट्ठियों में जैसे कि अक्सर होता है, रिहान फजल की जो विवेचना होती है उसका जादू ज्यादातर मेल्स में नजर आता है, तो वही सारी जितनी मेल्स हैं सब में लगभग
जाने की जिद ना करो
जी। और शुरुआत करूंगी मोहिनी पुराने के मेल से। वो लिखती हैं कि उनकी जो विवेचना थी वो बहुत सुकून देने वाला कार्यक्रम लगा। मैंने दिन भर की थकान के साथ ये कार्यक्रम सुना पर मन एक क्षण में ही शांत और प्रफुल्लित हुआ। सुबह हुई है अभी अभी और कोई खूबसूरत फूलों का उपहार जैसे ले आए वैसा लगा। और कह रही हैं कि राजेश प्रियदर्शी की आवाज आपकी राय में 2-3 मिनट के लिए ही सही पर सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, और थैंक यू कह रही हैं उनको।
चलिए राजेश जी, आज आपकी चिट्ठियों के जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन मैं आपकी बात मोहिनी जी उन तक जरूर पहुंचा दूंगा।
तो आपके लिए भी है मोहनलाल जी, उन्होंने लिखा है कि पिछले दोनों इंडिया बोल में विषय और चर्चा दोनों सार्थक लगे। पुष्पेश पंत जी के सटीक और गहराई भरे विचारों के कारण चर्चा विशेष अर्थपूर्ण लगी।
मोहिनी जी, 2 इंडिया बोल कार्यक्रमों का कर रही हैं और 1 इंडिया बोल कार्यक्रम जो पिछले शनिवार को प्रसारित हुआ था और उससे पहले जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, ये दोनों कार्यक्रमों की बात कर रही हैं। एक में जो पिछला कार्यक्रम हमारा प्रसारित हुआ था उसमें विरोध का तरीका क्या यही सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों पर ये इंडिया बोल था जिसमें कि ओम थानवी और टेलीफोन लाइन पर जिन्होंने सम्मान लौटाया वो भी मौजूद थे। तो आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे ये चाहते हैं मोहिनी जी कि हमारे कार्यक्रम में आपकी हम आवाज़ भी सुनना चाहते हैं, तो चिट्ठी तो आप लिख ही रही हैं लेकिन अगली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा ज़रूर लें।
बिल्कुल। और एक और श्रोता जो नियमित रूप से हमें मेल लिखते हैं, जंग बहादुर सिंह
गोल पहाड़ी जी,
उन्होंने लिखा है कि रिहान फजल ने विगत शाम जो विवेचना की वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गूंज रही है अभी, दिल बाग बाग हो गया। कहते हैं कि गजल के हिट होने पर फरीदा जी तो मकबूल हो गई मगर जिसने लिखा फयाज हाशमी उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए रिहान जी को शुक्रिया कन्वे कर दीजिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जंग बहादुर सिंह जी कि आपने इस कार्यक्रम की तारीफ की। वैसे इस कार्यक्रम की काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। जहाँ तक इस विशेष कार्यक्रम की बात है, बिल्कुल आपका कहना सही है कि कभी कभी जो पर्दे के सामने लोग होते हैं उनके बारे में तो हम जान जाते हैं लेकिन जो पर्दे के पीछे होते हैं उनके बारे में नहीं जानते। आपने शोले फिल्म का एक उदाहरण भी दिया है इस चिट्ठी में, लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने के बाद लोग फयाज हाशमी को भी अब जरूर जानने लगेंगे, ऐसा हमारा मानना है।
और इसी कड़ी में डॉक्टर सत्य कमलाकर की चिट्ठी है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से। उन्होंने भी तारीफ की है और लिखते हैं कि पिछले दिनों आपने इस अकिंचन को फोन कर बड़ी मेहरबानी की, शायद रिहान जी ने उनको फोन किया है जी। और लिखते हैं कि जो भारत पाकिस्तान श्रृंखला पर प्रसारित कार्यक्रम था उसको डाउनलोड के लिए अगर उपलब्ध कराएं तो अच्छा होगा। चर्चिल और महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण से संबंधित कार्यक्रमों की भी इन्होंने तारीफ की है लेकिन ये यही कह रहे हैं कि मेरी दृष्टिहीनता को नजर में रखते हुए ये बताएं कि क्या दोनों कार्यक्रम डाउनलोड किए जा सकते हैं।
फिलहाल ये जो हमारी चारों सभाएं हैं यानी कि नमस्कार भारत, विश्व भारती, घटना चक्र, इन कार्यक्रमों को लाइव सुना जा सकता है और जब लाइव ये खत्म होता है तो उन्हीं जगहों पर आप ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम सुन सकते हैं। फिलहाल इनको डाउनलोड नहीं किया जा सकता,
इसलिए पॉडकास्ट की सुविधा नहीं है फिलहाल।
लेकिन यह है कि आप 24 घंटे तक ये कार्यक्रम जो हमारे वेबसाइट पर रहते हैं तो आप इस दौरान सुन सकते हैं।
और डॉक्टर सत्य कमलाकर ने एक और बात लिखी है कि मैं आदरणीय वसतुल्ला खां को भी पत्र लिखना चाहता हूं, इसके लिए मुझे किस पते पर लिखना होगा कृपया सूचित करें।
आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप हमें ही लिख के भेज दीजिए और आपकी इस चिट्ठी को हम उन तक जरूर पहुंचा देंगे।
और सत्य प्रकाश शुक्ला ने एक मेल लिखा है, इन्होंने अजय शर्मा ने जो तेलंगाना से रिपोर्टिंग
सूखे की यात्रा
जी उसकी तारीफ की है। लिखते हैं कि सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि खेती करना अब किसानों को बोझ मालूम पड़ रहा है और इसकी वजह से लोग दिल्ली, सूरत, लुधियाना जैसे व्यापारिक शहरों में पलायन कर रहे हैं।
सत्य प्रकाश शुक्ला जी, ये जो हमारी श्रृंखला है ये सूखे से जो पीड़ित लोग हैं उन पर बीबीसी की विशेष श्रृंखला है और इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि ऐसी जगहों के हम बारे में आपको बताएं कि किसानों की क्या समस्याएं हैं और खासकर मीडिया में इन सारी चीजों का जिक्र ना के बराबर होता है, तो जनता के सामने सही तस्वीर को रखना ही हमारा मुख्य मकसद है। आपको इस श्रृंखला पसंद आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में इतना वक्त नहीं है कि हम और चिट्ठियां ले सकें
जी। तो हम चलते चलते श्रोताओं को अपना पता बताएंगे।
तो पता नोट करें, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003। और अब मोहनलाल शर्मा
और स्वाति बख्शी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आपके पत्रों के साथ थे मोहनलाल शर्मा और स्वाति बख्शी। इन दिनों भारत का दौरा कर रही दक्षिण अफ्रीकी टीम 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज में 2-1 से आगे है। T20 की श्रृंखला वो पहले ही 2-0 से जीत चुकी है। बाकी बचे 2 एक दिवसीय मैचों और 4 टेस्ट मैचों के शुरुआती 2 मैचों के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। अगला एक दिवसीय मैच चेन्नई में खेला जाएगा। एक रिपोर्ट आदेश गुप्त से। रिपोर्ट की शुरुआत हो रही है चयन समिति के अध्यक्ष संदीप पाटिल की आवाज से।
इन द फोर्थकमिंग टेस्ट सीरीज लुकिंग एट ऑल दीज एंगल्स आई थिंक वी पिक्ड रविंद्र जाडेजा।
बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व बल्लेबाज संदीप पाटिल ने जब आज बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया तो उसमें ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का नाम भी शामिल था, जबकि हरभजन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रविंद्र जडेजा ने अपना पिछला टेस्ट मैच पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला था, जबकि हरभजन सिंह ने अपना पिछला मैच श्रीलंका के खिलाफ इसी साल अगस्त में गोल में खेला। टेस्ट टीम में तो केवल यही परिवर्तन हुआ। हरभजन सिंह को टेस्ट टीम से बाहर किए जाने को लेकर भारत के पूर्व ऑलराउंडर और चयनकर्ता रहे मदन लाल कहते हैं,
देखिए ये गलत बात है, हरभजन सिंह को बाहर नहीं निकालना चाहिए था क्योंकि अभी उन्होंने अच्छी पॉलिश करनी शुरू की थी। और रविंद्र जडेजा को लेने का मेरे को समझ नहीं आई कि रविंद्र जडेजा को क्यों लिया गया है, क्योंकि एक आर अश्विन है और उसके साथ साथ अमित मिश्रा है और मैं समझता हूँ कि यही 2 बॉल खेलेंगे।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बचे हुए 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के लिए भी टीम में केवल एक परिवर्तन हुआ। तेज गेंदबाज उमेश यादव को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह श्रीनाथ अरविंद को टीम में जगह दी गई। उमेश यादव को वनडे टीम से बाहर किए जाने से मदन लाल को ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन सुरेश रैना जिन्होंने पिछले 2 मैचों में खाता तक नहीं खोला उन्हें लेकर मदन लाल थोड़े चिंतित हैं।
उमेश यादव ड्रॉप किया तो बिल्कुल सही किया, क्योंकि देखिए अब वो इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहा था। और अरविंद जो है उसको मैंने जो 2020 में देखा है, देखिए अगर उसको आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वाकई में वो आगे इंडियन टीम में बॉलिंग में डिफरेंस डाल देगा। हाँ देखिए सुरेश रैना की अगर बात करके उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको और मौके दिए जा रहे हैं ताकि वो एक फॉर्म में आ सके, पर उनका भी सिलेक्शन जो था मेरे को लग रहा था काफी डाउटफुल था मेरे विचार में, क्योंकि उनकी जगह में कई ऐसे युवा बैट्समैन है जिन्हें उनको मौका मिलना चाहिए।
युवा बल्ले बाजों को अवसर देने के नाम पर तो टीम में अंबाती रायडू पहले से ही मौजूद हैं। कुल मिलाकर टीम में बदलाव तो अधिक नहीं हुए हैं, लेकिन 2020 सीरीज हारने के बाद अब एक दिवसीय सीरीज में भी भारत 2-1 से पीछे है। ऐसे में गुरुवार को जब चौथे मैच में भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने एक दिवसीय सीरीज बचाने के साथ साथ अपने चयन को सही साबित करने की चुनौती भी होगी।
और अब चलते चलते देखते हैं क्या है मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के एक निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद पर दिल्ली के प्रेस क्लब में काली स्याही फेंकी गई है। वहीं एक ट्रक ड्राइवर की झुलसकर मौत के बाद बुलाए गए बंद के कारण श्रीनगर और कुछ अन्य शहरों में कई जगह झड़पों के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्नाटक और गुजरात में मैगी नूडल्स कुछ दिनों में फिर से बिक पाएंगे। नेस्ले कंपनी के मुताबिक ताज़ा लेबोरेटरी परीक्षण में मैगी को सुरक्षित पाया गया है। इस साल के तीसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था का विकास 6.9% के दर पर हुआ है। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोपू के कारण आई बाढ़ और भारी बारिश में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। फिलीपींस में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। पंजाब में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटना के खिलाफ कई शहरों में लोगों के प्रदर्शन के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। अमृतसर में 52 लोगों को एहतियातन गिरफ्तार किया गया है। सीरिया के उत्तरी और मध्य इलाकों में कई जगहों पर सरकारी सेना और सहयोगी गुटों ने विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। अलेप्पो में भारी हमलों की वजह से हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की तिलक भाटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।